दिन भर 4 अगस्त दिन रविवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। भारत प्रशासित कश्मीर में बने तनाव के बीच दिल्ली से श्रीनगर तक बैठकों का दौर, आम लोग परेशान।
कुछ लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं, बेचैनी है, फ्रस्ट्रेशन है, सुकून नहीं है, जहनी कोफ्त है, लोगों में बहुत ज्यादा एग्नी है।
अमेरिका के दो शहरों में गोलीबारी, कम से कम 30 की मौत, कई घायल।
9 dead plus the suspects, so 10 dead on...
और खास रिपोर्ट में पड़ताल, असम के कई लोगों के लिए क्यों मुसीबत बन गया है NRC।
नोटिस है, स्कूल सर्टिफिकेट है 71 के पहले मेरे माता जी का, और ये हमारा दादू का 66 का बाइकल है।
खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार गुरप्रीत सैनी से। भारत प्रशासित कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती और पर्यटकों को राज्य से जाने के आदेश के बाद अनिश्चितता का दौर बना हुआ है। PDP प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हालात पर चर्चा के लिए अपने घर पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक की है और कहा है कि भारत के आक्रामक रवैये से क्षेत्र में संकट पैदा हो सकता है। पाकिस्तान ने भारत पर नियंत्रण रेखा के पार क्लस्टर बम इस्तेमाल करने के आरोप भी लगाए हैं, जिन्हें भारत ने खारिज किया है। इमरान खान ने आरोप लगाया है कि भारत नियंत्रण रेखा के पार नागरिकों को निशाना बनाकर हमले कर रहा है। लगातार 9वें हफ्ते प्रदर्शन कर रहे लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर हांगकांग में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन की खिड़कियों पर पत्थर, अंडे और दूसरी चीजें फेंकी थी। शनिवार को तटीय शहर कावलून में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच छिटपुट झड़पें हुई थी। पुलिस ने कहा है कि उसने गैर कानूनी रूप से लोगों के इकट्ठा होने और हिंसा करने में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। हांगकांग की राजनेता और कार्यकर्ता एमिली लाउ ने BBC से कहा कि सड़कों का दृश्य देखकर वो हैरान है।
It is totally unprecedented. Many Hong Kong people are deeply worried.
ये पूरी तरह से अनोखी बात है। हांगकांग में बहुत से लोग चिंतित हैं और अगर हम यही स्थिति बनी रहती है तो ये नुकसान पहुंचाएगी। ये एक देश की दो प्रणालियों को भी नुकसान पहुंचाएगी। ये थे हांगकांग की राजनेता और कार्यकर्ता एमिली लाउ के शब्द। अमेरिका में गोलीबारी की दो घटनाओं में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना टेक्सास प्रांत के अलपासो शहर में हुई, जिसमें 20 लोग मारे गए। पुलिस ने इस मामले में 21 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया है। इसके कुछ घंटे पहले ओहायो प्रांत के डेटॉन शहर में हुई गोलीबारी में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 26 लोग घायल हुए। पुलिस का कहना है कि जवाबी कार्रवाई में हमलावर की मौत हो गई है। सूडान में सत्तारूढ़ सैन्य परिषद और मुख्य विपक्षी गठबंधन के बीच नए संविधान को लेकर समझौता हुआ है, जो 3 साल में पूरी तरह नागरिक शासन स्थापित करेगा। ये समझौता महीनों के लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों के बाद हुआ। इस प्रदर्शनों के दौरान खासी हिंसा हुई थी और खून बहा था। आम नागरिकों के बहुमत से अगस्त के मध्य में एक नई परिषद का गठन होगा और महीने के आखिर तक परिषद एक प्रधानमंत्री और एक अस्थायी सरकार मनोनीत करेगी। इथियोपिया के मध्यस्थ मोहम्मद दरीर ने कहा कि ये सूडान के लिए बड़ा दिन है। ये दिन सूडान के इतिहास में दर्ज हो चुका है। ये लोकतांत्रिक शासन स्थापित करेगा जिसमें कानून होगा और बराबरी भी। ये वो राष्ट्र होगा जो अपने नागरिकों को कभी हाशिए पर नहीं रखेगा। ये थे इथियोपिया के एक मध्यस्थ मोहम्मद दरीर के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि खाड़ी में एक विदेशी तेल टैंकर पकड़ा गया है। सरकारी चैनल के मुताबिक अरब देशों के लिए तेल की तस्करी कर रहे इस टैंकर को रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने बुधवार को अपने कब्जे में लिया था। बताया जा रहा है कि इसमें 7 लाख लीटर तेल है। जहाज के 7 क्रू सदस्य भी पकड़े गए हैं, मगर उनकी नागरिकता के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। पिछले महीने ईरान ने एक ब्रितानी टैंकर पकड़ा था और एक अन्य को चेतावनी के बाद जाने दिया था। BBC समाचार।
दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव।
अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने, मैंने सुना है कि होटल्स को एडवाइजरी जारी की है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग यहाँ नहीं होने देंगे।
हमें अभी यहाँ से जाने को कहा गया है। सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने के लिए हम अभी जा रहे हैं।
टॉकिंग टू लोकल पीपल,
स्थानीय लोगों से बात करें तो उन्हें कुछ भी नहीं पता है।
सब कुछ सही जा रहा है तो अब मुझे नहीं पता ना ये भूचाल आया तो कैसे आया। इससे पहले भी 1990 में जब पंडितों पे ऐसा ऐलान हुआ कि आप जाओ रातों रात भाग जाओ, ऐसे ही सिचुएशन आज भी है।
दिनभर में सबसे पहले बात भारत प्रशासित कश्मीर की। ये आवाजें जो आपने अभी सुनी हमारे साथी आमिर पीरजादा ने भेजी हैं। कश्मीर में खुफिया रिपोर्टों के आधार पर जारी एडवाइजरी के बाद से ही अटकलों, अफवाहों और अनिश्चितताओं का दौर बना हुआ है। पर्यटक कश्मीर घाटी छोड़ रहे हैं, वहीं आम लोग भविष्य को लेकर परेशान हैं। राजनीतिक दल भी चिंता जाहिर कर रहे हैं। इस बीच आज दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक बैठकों का भी दौर जारी रहा। सुनिए श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
कश्मीर घाटी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती, पर्यटकों और श्रद्धालुओं को कश्मीर छोड़ने की एडवाइजरी के बाद कश्मीर के आम लोगों में बेचैनी और खौफ कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक आम कश्मीरी,
आप अगर किसी भी इंसान और शख्स से आप पूछेंगे कश्मीर के तो वो बिल्कुल एक इमोशनल जवाब ही देगा, क्योंकि कुछ लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं, बेचैनी है, फ्रस्ट्रेशन है, सुकून नहीं है, जहनी कोफ्त है, लोगों में बहुत ज्यादा एग्नी है।
हालांकि इतवार को भी कश्मीर में दुकानें खुली रहीं और गाड़ियों की आवाजाही भी जारी रही। उधर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बताया कि उन्होंने इतवार को श्रीनगर में राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई थी जिसको पुलिस ने होने नहीं दिया।
आज हमने जो हमारी तमाम जमातें हैं, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, पीसी है, पीडीएफ है, बाकी भी जितने भी हमारे जमात है, इंडिपेंडेंस है, शाह फैसल साहब की जमात है, तारिक आमीन साहब, हम सब ने एक फैसला किया था कि हम कहीं मिल बैठ के कुछ बात करेंगे आपस में, और इसलिए हमने एक होटल का इंतखाब किया था 6 बजे के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने उनको तमाम, मैंने सुना है कि होटल्स को एडवाइजरी जारी की है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग यहां नहीं होने देंगे।
महबूबा मुफ्ती ने उस बैठक में अलगाववादी नेताओं और धार्मिक संगठनों को भी शामिल होने को कहा था। पीटीआई के अनुसार कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती से पैदा तनाव के चलते आज भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में इंटेलिजेंस चीफ्स के साथ एक बैठक की। उस बैठक में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, होम सेक्रेटरी राजीव गौबा भी मौजूद थे। श्रीनगर में भी आज बीजेपी नेताओं की एक बैठक हुई। बीजेपी कश्मीर जोन के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने प्रेस बयान में बताया है कि आम लोगों को तनाव से बाहर आना चाहिए और सामान्य रूप से अपना कामकाज जारी रखें। उधर खबरों के अनुसार जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने इतवार को 100 क्रिकेट खिलाड़ियों, जिनमें इरफान पठान भी शामिल हैं, को कश्मीर छोड़ने के लिए कहा है। दरअसल बीते एक हफ्ते के अधिक समय से कश्मीर में कई ऐसे सरकारी ऑर्डर्स जारी हुए हैं जिनमें कश्मीर घाटी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती, कई महीनों का राशन इकट्ठा करने की बात, कश्मीर की मस्जिदों का ब्यौरा इकट्ठा करना, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को कश्मीर छोड़ने की एडवाइजरी जारी करने जैसे मामलों का जिक्र है। इन सरकारी ऑर्डर्स के बाद कश्मीर में तनाव के हालात पैदा हो गए हैं। हालांकि राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कई बार आश्वासन दिलाया कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन आम लोग ऐसे बयानों से संतुष्ट नहीं हो पाए हैं। बीते साल राज्य में पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार उस समय टूट गई थी जब बीजेपी ने पीडीपी से अपना समर्थन वापस लिया था। इस समय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है और सभी राजनीतिक गतिविधियां ठप हैं। सरकार गिरने के बाद आज तक राज्य में विधानसभा के चुनाव नहीं कराए गए हैं। इस सब के बीच कश्मीर की आम जिंदगी अपनी डगर पर तो चल रही है, लेकिन ये चर्चा जारी है कि कल क्या होने वाला है। माजिद जहांगीर, बीबीसी श्रीनगर।
पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई है वो अभी जारी है। ये बैठक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के घर हो रही है। इसे लेकर मैंने अब से कुछ मिनट पहले श्रीनगर में मौजूद बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से बात की।
जी देखें, ये मीटिंग एक्चुअली 2-3 दिन से कई पार्टियां ये चाह रही हैं। हालांकि इंजीनियर रशीद जो इस वक्त दिल्ली में ही है, उनको एनआईए ने समन किया है, उन्होंने ये आइडिया दिया था, उसके बाद उसमें कुछ देरी हो गई। उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने फैसला किया आज ऑल पार्टी मीटिंग एक होटल में बुलाने का, लेकिन पुलिस ने उसकी इजाजत नहीं दी उनको। जब अनुमति नहीं मिली पुलिस की तरफ से तो महबूबा ने अपने घर पे मीटिंग बुलाई, लेकिन फारूक अब्दुल्ला की तबीयत खराब है, वो घर पे ही है। उसके पास सारे लीडर, कांग्रेस, शाह फैसल की पीपल्स मूवमेंट और सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस, खुद सज्जाद लोन भी है उसमें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सभी हैं। तो वो वहां से फिर अभी यहां आए जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त फारूक अब्दुल्ला के निवास के बाहर, वहां पे सभी लीडर बात कर रहे हैं और तवक्कुल है कि इन ये वहां फैसला करेंगे, कॉन्सेंसस करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर से कोई मुलाकात चाहेंगे कल, क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर भी बहुत बिजी रहेंगे, सुबह में ही कैबिनेट मीटिंग है, उसके बाद पार्लियामेंट में भी उनको प्रेजेंट रहना है, मे बी कल दिन में ये कोई अपॉइंटमेंट सीख करें प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं आ रहा है कि होना क्या है। जिस तरह की अफवाहों का बाजार गर्म है, कहा जा रहा है कि धारा 35 और धारा 370 को हटाया जा रहा है, और जंग की बातें भी हो रही हैं क्योंकि जो है सीमा पर भी बहुत तनाव है, पूरा तनाव ग्रस्त है पूरा इलाका, तो इसको लेकर ये नेता जो है ये एकजुट हुए हैं और कहते हैं कि हम एक ही फैसला करके प्राइम मिनिस्टर से टाइम मांगें।
जी, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला पहले जाकर गवर्नर से भी मिल चुके हैं, इसके बाद क्या और नया डेवलपमेंट वो चाहते हैं कि क्या और क्लेरिफिकेशन वो चाहते हैं सरकार की तरफ से, क्या कोई बात सामने निकल के आ रही है?
जी देखिए, गवर्नर ने तो साफ साफ इशारा दिया कि उन्हें अभी कुछ मालूम नहीं है। जब महबूबा और उमर उनसे मिले उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ही उनको दिल्ली से कुछ पता चलेगा तो वो तुरंत बताएंगे। उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि गवर्नर जैसे उच्च अधिकारी को, हालांकि वही एक वाहिद यहाँ पे शासन चला रहे हैं, उनको भी जब मालूम नहीं है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्टली दिल्ली से क्लैरिफाई करना चाहिए। तो यही एक सोच बन रही है कि बजाय इसके कि राजभवन जाया जाए, डायरेक्ट दिल्ली जाया जाए, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर के साथ भेंटवार्ता करके उनसे एश्योरेंस लिया जाए कि होना क्या है या होगा क्या, क्योंकि बड़े पैमाने पर 30 साल में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं हुए हैं। कारगिल की जंग जब हुई उस वक्त भी यहाँ पे सुरक्षा कर्मियों की तैनाती नहीं हुई, और अभी अभी खबरें आ रही हैं कि कई अस्पतालों में मरीजों को फोर्सिबली छुट्टी दी जा रही है, बिल्डिंग्स को इवैक्यूएट किया जा रहा है ताकि वहां पे फोर्सेस को रखा जाए।
जी रियाज साहब, सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई नई जानकारी जो आपके पास हो?
प्रशासन तो कोई जानकारी नहीं देता है, प्रशासन बार बार ये कहता है कि सब ठीक है, हालांकि ग्राउंड पे कुछ भी ठीक नहीं है। पेट्रोल पंप्स पे लंबी लंबी कतारें हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो गई है, लोग खाने की सामग्री लेने के लिए एक दूसरे के ऊपर चल दौड़ते हैं दुकानों के बाहर, तो एक तरह की कयामत का माहौल है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि मालूम ही नहीं है क्या होगा। अभी आज सब लोगों में ये अफवाह चली है कि कल से कर्फ्यू होगा, अभी हमें प्रशासन से ही पता चला कि कर्फ्यू पासिस भी बांटे गए हैं कुछ डिपार्टमेंट्स को, लेकिन पत्रकारों को अभी तक कर्फ्यू पासिस नहीं दिए गए हैं।
ये थे रियाज मसरूर। तनाव सीमा पर भी है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक की। इस बैठक में क्या हुआ ये जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं दिलनवाज पाशा। जी दिलनवाज
जी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक की है और कहा है कि भारत के आक्रामक रवैये से क्षेत्र में नया संकट पैदा हो सकता है। इमरान खान ने आरोप लगाया है कि भारत नियंत्रण रेखा के पार नागरिकों को निशाना बनाकर हमले कर रहा है। एक ट्वीट में इमरान खान ने कहा, मैं भारत की ओर से नियंत्रण रेखा के पार बेकसूर नागरिकों पर हमले और क्लस्टर बमों के इस्तेमाल की आलोचना करता हूं। ये मानवीय कानून और भारत की 1983 की पारंपरिक हथियारों पर कन्वेंशन की प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन है। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को शांति और सुरक्षा के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय खतरे का संज्ञान लेना चाहिए। एक अन्य ट्वीट में इमरान खान ने कहा, कब्जाए कश्मीर में रह रहे लोगों की पीड़ा की लंबी रात को खत्म करने का वक्त आ गया है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समझौते के तहत अपना भाग्य स्वयं चुनने के अधिकार का इस्तेमाल करने देना चाहिए। जी वासल
जी धन्यवाद। इमरान खान और पाकिस्तान की तरफ से जो आरोप लगाए जाते हैं भारत की तरफ से उनका खंडन किया जा रहा है। शुक्रिया दिलवास। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमेरिका के दो शहरों में हुई गोलीबारी की घटनाओं में कम से कम 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। गोलीबारी की पहली घटना टेक्सास राज्य के अलपासो शहर में हुई जहां 20 लोगों की मौत हो गई। वहीं कुछ घंटे बाद ओहायो प्रांत के डेटॉन में हुई गोलीबारी में हमलावर समेत 10 लोग मारे गए। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हरिता कांडपाल।
अमेरिका के टेक्सास प्रांत के अलपासो शहर के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक व्यक्ति ने अचानक गोलियां चलाना शुरू कर दिया। उस वक्त वॉलमार्ट के इस स्टोर में लोगों की भारी भीड़ थी। अचानक हुई गोलीबारी की चपेट में आकर कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में डलास के रहने वाले एक 21 वर्षीय संदिग्ध को गिरफ्तार किया है और घटना को हेट क्राइम यानी घृणा की वजह से किया गया अपराध मानकर जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का अनुमान है कि हमले के पहले इस व्यक्ति ने एक दस्तावेज ऑनलाइन पोस्ट किया था। इसमें अप्रवासियों को निशाने पर लेते हुए उन्हें स्थानीय लोगों की नौकरी लेने का जिम्मेदार बताया गया है। अल्पासो के पुलिस प्रमुख ग्रेग एलन ने बताया,
Right now we have a manifesto from this individual that indicates to some degree it has a nexus to potential.
ग्रेग एलन कह रहे थे कि फिलहाल हमारे पास वो दस्तावेज है जो इस व्यक्ति ने पोस्ट किया है, जिससे कुछ हद तक लगता है कि ये व्यक्ति हेट क्राइम कर सकता है। ये दस्तावेज इसी ने पोस्ट किया है या नहीं, ये पुख्ता करने के लिए हमने इसे गिरफ्तार किया है। मीडिया में संदिग्ध की पहचान पैट्रिक कुजियोस के तौर पर जाहिर की गई है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने इसे टेक्सास के इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक बताया। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक कायरतापूर्वक काम बताया है। अमरीकी मीडिया में सीसीटीवी फुटेज दिखाए जा रहे हैं। इसमें गहरे रंग की टी शर्ट पहना एक व्यक्ति राइफल थामे दिखाई देता है। मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ये संदिग्ध की ही तस्वीरें हैं। इस घटना के कुछ घंटे बाद ओहायो के डेटॉन शहर में एक व्यक्ति ने अंधाधुंध गोलीबारी की। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हमलावर का मकसद क्या था। डेटॉन के उप पुलिस प्रमुख मैट कॉपर ने बताया,
9 डेड प्लस द सस्पेक्ट्स सो 10 डेड ऑन ईस्ट 5th स्ट्रीट।
मैट कॉपर कह रहे थे कि ईस्ट 5th स्ट्रीट में 9 लोग और साथ में एक हमलावर यानी कुल 10 लोगों की मौत हो गई। हमारी जानकारी के मुताबिक 16 लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उनकी स्थिति के बारे में हमें अभी जानकारी नहीं है। इस मामले को बहुत जल्द सुलझा लिया जाएगा। जांच अभी जारी रहेगी। अमेरिका में इस साल गोलीबारी की ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। एक हफ्ते पहले कैलिफोर्निया के फूड फेस्टिवल में गोलीबारी की घटना हुई थी जिसमें 3 लोग मारे गए थे।
रिपोर्ट सुना रही थी हरिता कांडपाल। वहीं महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई शहरों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश ने जनजीवन पर असर डाला है। मुंबई के कुछ लोगों से बात की हमारी सहयोगी मधुपाल ने।
मैं यहाँ वसई में 10 साल से रह रही हूँ, लेकिन लास्ट 2 ईयर्स से ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। पानी बहुत ज्यादा भर रहा है। ग्राउंड फ्लोर पे मेरा घर है तो पानी अंदर भी आ चुका है, जिसकी वजह से 2 दिन से मेरे को अपनी फ्रेंड के घर पे रहना पड़ रहा है।
इतना बारिश तो मैंने नहीं देखा था, क्योंकि मैं जो मिश्री में रहती थी और वो एरिया काफी लेवल से ऊंचे था।
परेशानी तो बहुत ज्यादा होती है, आपके ट्रांसपोर्टेशन सारे बंद हो जाते हैं तो आपको हर जगह पैदल जाना पड़ता है। जैसे कल ऑफिस से आने के बाद भी घर पहुंचने के लिए करीब 4-4.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है कमर इतने पानी में।
जो सड़कों पे पानी है अभी तो ऐसा लगता है जैसे तालाब सा बन गया या तो नदी जैसे बह रही है आसपास, और कहीं भी निकलना मुश्किल हो गया, घुटनों तक पानी आ गया है और स्कूल भी बंद चल रहे हैं तो काफी प्रॉब्लम हो रही है।
ये थे मुंबई के रहने वाले कुछ लोग जो बारिश से हो रही दिक्कतों की जानकारी दे रहे थे। और अब एक खास रिपोर्ट। असम में तैयार हो रहा नागरिकता रजिस्टर यानी NRC कई लोगों के लिए मुसीबत की वजह बन गया है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो लिस्ट में नाम नहीं होने को लेकर परेशान हैं। तो कुछ की शिकायत है कि उन्हें दस्तावेज होने के बाद भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जमीनी स्थिति की जानकारी के लिए BBC संवाददाता प्रियंका दुबे ने ऐसे कई लोगों से बात की। सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
असम के दरांग जिले के खरपेटिया इलाके में रहने वाले उत्पल शाह के परिवार के सभी सदस्यों का नाम 1 साल पहले प्रकाशित हुई नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स या NRC ड्राफ्ट में शामिल था। इसीलिए परिवार कुछ महीने तक तो सुकून में रहा, लेकिन जब 26 जून को प्रकाशित हुई नई एडिशनल ड्राफ्ट एक्सक्लूजन लिस्ट में उनकी मां माया रानी शाह को डी या डाउटफुल वोटर बताया गया, तब अचानक सभी के होश उड़ गए।
नोटिस है, हाँ, मां 19 में वोट दिया था और ये स्कूल सर्टिफिकेट है 71 का, पहले मेरे माता जी का, और ये हमारा दादू का 66 का बाइकल है, वोटर लिस्ट सर्टिफाई कॉपी लिखी सी 71 का, 51 का NRC में हमारे दादू का नाम है।
सुनवाई के दौरान खुद को भारतीय नागरिक साबित करने के लिए राज्य भर के सरकारी दफ्तरों से वेरीफाई करवा कर लाए गए थैला भर कागजात NRC के अधिकारियों को दिखाने के बाद भी उत्पल डरे हुए हैं।
इतने सारे कागज आपने इकट्ठा किए हैं, मतलब हाँ। ये पूरे कागज आप कितना वक्त लगा आपको ये सब इकट्ठा?
1 हफ्ता लगा। कुकड़ा जर गया मौसी के घर में, वहाँ तो एक मौसी का एक फाइल लेके आया, वो मौसी मर गया हमारा, उसका वोटर लिस्ट लेके आया, सबको लेके गया।
अचानक से जब आपकी माँ का अभी 26 तारीख को नाम आ गया डी वोटर में, तो मतलब आप लोग एकदम चौंक गए होंगे।
परेशान हो गया, ये क्या हुआ हमारे साथ।
एनआरसी की आखिरी लिस्ट के प्रकाशन को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच जारी अदालती बहस से सैकड़ों मील दूर असम में उत्पल साहा जैसे लोगों की जिंदगी अब कागजों के पुलिंदों में तब्दील हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जारी एनआरसी की प्रक्रिया दरअसल राज्य में अवैध तरीके से घुस आए बांग्लादेशियों के खिलाफ हुए 6 साल लंबे जन आंदोलन का नतीजा है। असम एकॉर्ड के अनुसार 25 मार्च 1971 के बाद असम में दाखिल हुए लोगों की नागरिकता को अवैध मानकर उन्हें वापस भेजा जाएगा। बीते साल जुलाई में प्रकाशित हुई एनआरसी की ड्राफ्ट लिस्ट में तकरीबन 40 लाख लोगों के नाम नहीं थे। इनमें से कुल 36 लाख लोगों ने अपनी नागरिकता साबित करने के लिए क्लेम फॉर्म भरे हैं। अब सभी को एनआरसी की आखिरी लिस्ट का इंतजार है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कागजात होने के बावजूद सालों अवैध नागरिकों की तरह जेल में बिताने पड़े। सुनिए बांग्लादेशी होने के आरोप में 3 साल डिटेंशन सेंटर में बिताकर आई भारतीय नागरिक मधुबाला मंडल को।
3 साल पहले एक शाम एनआरसी का नोटिस कोई मेरे घर के बाहर पेड़ में अटका के चला गया। मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि कागज में क्या लिखा है। फिर 2 महीने बाद एक दिन अचानक घर में पुलिस आ गई। मैंने उनसे कई बार कहा कि मेरा नाम मधुबाला मंडल है और मैं बांग्लादेशी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा नाम मधुबाला दास लिखा और मुझे कोकराझार जेल में बंद कर दिया।
गलत पहचान के कारण 3 साल डिटेंशन सेल की यातना झेलकर बाइज्जत बाहर आई मधुबाला मंडल अपनी रिहाई की सारी उम्मीद छोड़ चुकी थी। जेल की भयावह यादें आज भी उन्हें सोने नहीं देती।
जेल में मैं एक कमरे में 40 औरतों के साथ रहती थी। वहां मेरी भूख खत्म हो गई और मैं बीमार रहने लगी। आंखों की रोशनी भी चली गई। मेरे सामने वहाँ कितने ही लोग बीमार पड़कर मर गए। मुझे लगा मैं भी मर जाऊंगी। समझ नहीं आता कि जब मैं भारतीय हूँ तो मुझे इस उम्र में बांग्लादेशी बताकर जेल में क्यों रखा गया।
एनआरसी की फाइनल लिस्ट प्रकाशित होने के ठीक पहले असम सरकार ने केंद्र से राज्य भर में 10 नए डिटेंशन सेंटर्स बनवाए जाने की प्रक्रिया को तुरंत तेज करने की मांग की है। इसके साथ ही आखिरी लिस्ट में शामिल न हो पाने वाले सैकड़ों लोगों के नए आवेदनों का निवारण करने के लिए राज्य भर में 200 फॉरेन ट्रिब्यूनल्स बनवाए जाने की प्रक्रिया जारी है। लेकिन इन कागजी मुश्किलों के साथ साथ असम में हर साल आने वाली बाढ़ यहाँ के लोगों के लिए एनआरसी में खुद को नागरिक साबित करने की लड़ाई को मुश्किल बना रहा है। बरपेटा जिले में बेकी नदी के किनारे बसे गमाड़ीगुड़ी गांव में रहने वाला नजरुल अहमद का परिवार इसी दौरी मार से जूझ रहा है।
बेकी में आने वाली बाढ़ की वजह से 2014 से अब तक 3 बार मेरा घर टूट चुका है। नदी, घर, मिट्टी सब बहाकर ले जाती है। इसके बाद जब हम नए गांव में रहने के लिए जाते हैं तो हमें बांग्लादेशी समझकर हम पर शक करते हैं और एनआरसी के दफ्तर में शिकायत कर देते हैं। मेरे दादाजी ने असम में 1913 में जमीन ली थी, लेकिन आज उस जमीन पर नदी का पानी बह रहा है। हमारे पास 1951 से लेकर अभी तक के सारे कागज हैं, लेकिन फिर भी मेरा नाम एनआरसी की लिस्ट में नहीं आया।
इधर मानव अधिकार पर काम कर रही सामाजिक संस्थाओं की रिपोर्टों के अनुसार असम में अभी तक 50 से ज्यादा लोग नागरिकता से जुड़े तनाव की वजह से आत्महत्या कर चुके हैं। एनआरसी की फाइनल लिस्ट प्रकाशित हो जाने के बाद यहाँ हालात और नाजुक हो जाने की आशंका है। बक्सा जिले के चुनबारी गांव में रहने वाले 60 वर्षीय अंबर अली खदान में पत्थर तोड़कर गुजारा करते थे, लेकिन एनआरसी लिस्ट में खुद को डी वोटर बताए जाने के बाद 7 जुलाई को उन्होंने ट्रेन के सामने कूदकर खुद अपनी जान दे दी। उनकी मौत के बाद से पत्नी हजीरा खातून की जिंदगी के जैसे सारे पन्ने बिखर गए हैं।
एनआरसी की सुनवाई से लौटने के बाद से वो बहुत परेशान रहते थे। न खाते, न पीते, न सोते और न किसी से ज्यादा बात करते, सिर्फ एक ही चिंता करते रहते, एनआरसी में नाम नहीं आया तो क्या होगा। उस दिन मैं बच्चों के लिए चावल बना रही थी जब वो अचानक उठे और पुराने कपड़े पहनकर कहीं निकल गए। हम सारा दिन ढूंढते रहे लेकिन कहीं नहीं मिले। फिर बाद में पता चला कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है।
इस बारे में सरकार का पक्ष जानने के लिए बीबीसी ने हर संबंधित जिले के उच्चतम पुलिस अधिकारियों से लेकर गृह मंत्रालय तक सबसे संपर्क किया, लेकिन सभी ने कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया। कैमरे के पीछे सभी ने एनआरसी की वजह से हो रही आत्महत्याओं को नकारते हुए कहा कि यह आत्महत्याएं निजी कारणों से हो रही हैं। लेकिन पीड़ित परिवारों के साथ काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता शाहजहां अली प्रशासन की इसी उदासीनता को असम में बढ़ रही आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार मानते हैं।
जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है उनकी टेंशन बहुत बढ़ गई है। इसके बाद फॉरेन ट्राइब्यूनल में खुद को नागरिक साबित करने के लिए बहुत से कागजात और वकील के लिए पैसा चाहिए। जिनके पास इतने साधन नहीं हैं, वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं।
दूसरी ओर 70 के दशक में असम बॉर्डर पुलिस में उप महानिरीक्षक रहे और गैर कानूनी ढंग से भारत में घुस आए बांग्लादेशियों पर ऑपरेशन लेमन्स राम नामक किताब लिखने वाले हिरण्य कुमार भट्टाचार्य का मानना है कि सरकारी महकमों के इतने प्रयासों के बाद भी एनआरसी की वर्तमान प्रक्रिया कमियों से भरी है।
वर्कर्स ऑफिसर इन्वॉल्व्ड इन प्रिपेयरिंग इन
बांग्लादेश से सटे असम के जिलों का गौर से विश्लेषण करने पर आप पाएंगे कि वहां एनआरसी ड्राफ्ट से बाहर किए गए नामों की संख्या उन इलाकों में गैर कानूनी ढंग से घुसे बांग्लादेशियों की तुलना में काफी कम है। इसका मतलब साफ है कि वहां कई लोग फर्जी दस्तावेजों को दिखाकर लिस्ट में शामिल हुए हैं।
असमिया लेखक और वरिष्ठ पत्रकार राजीव भट्टाचार्य एनआरसी की प्रक्रिया में मौजूद खामियों के लिए एक सेंट्रल डेटाबेस की कमी को जिम्मेदार मानते हैं।
एनआरसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर असम।
फिलहाल एनआरसी की प्रक्रिया में झोल है जिसकी वजह से कई वास्तविक नागरिकों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया, जबकि बहुत से बांग्लादेशी फर्जी दस्तावेजों की मदद से लिस्ट में शामिल हो गए। ये कमी दुरुस्त की जानी चाहिए ताकि किसी भारतीय नागरिक का नुकसान ना हो।
सही और गलत की कानूनी पेचीदगियों से इतर एनआरसी की प्रक्रिया उन लाखों लोगों के भविष्य के ऊपर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है जिनके ऊपर स्टेटलेस सिटीजन या बिना देश के नागरिक हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। एनआरसी के लिस्ट से बाहर होकर डिटेंशन सेंटर तक का सफर पूरा करने वाले लोगों का भविष्य आखिर क्या होगा? इस सवाल का सुलझा हुआ जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। प्रियंका दुबे, बीबीसी, असम।
हरे को सुर पातोर पानी जीवन रे।
प्रियंका दुबे की रिपोर्ट पर आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार। और अब खेल की खबरें। स्टूडियो में आ चुके हैं आदेश कुमार गुप्त जी। आदेश जी, क्या खबरें आपके पास?
जी वात्सल्य, आज तो खबरों का भंडार है, लेकिन मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा कि फ्लोरिडा में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच जो दूसरा 2020 मुकाबला खेला जाना है थोड़ी देर में शुरू होगा, लेकिन ताज़ा समाचार यह कि भारत के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का
अच्छी चल रही है
जी फैसला किया है। और जहाँ तक विकेट की बात है तो वो कैसा व्यवहार करेगी कल का मुकाबला देखने के बाद कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन भारतीय टीम में कोई परिवर्तन नहीं है। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत के गैर वरीयता हासिल खिलाड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की रोजी जोड़ी ने बड़ा उलटफेर करते हुए तीसरी वरीयता हासिल चीन के ली जुन हुई और लियू यूचेन की जोड़ी को पुरुष युगल वर्ग के फाइनल में 21-19, 18-21, 21-18 से हरा कर खिताबी जीत हासिल की। वैसे भारतीय जोड़ी का ये पहला खिताब है। उधर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो एशेज सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है एजबेस्टन में, वहाँ स्टीव स्मिथ ने दूसरी पारी में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 142 रन बनाए हैं, नाबाद हैं यानी दोनों पारियों में।
यानी स्मिथ की वापसी बड़ी जोरदार रही। बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त। और अब चलते चलते मुख्य समाचार सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। भारत प्रशासित कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती और पर्यटकों को राज्य से जाने के आदेश के बाद अनिश्चितता का दौर बना हुआ है। पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हालात पर चर्चा के लिए अपने घर पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक की है और कहा है कि भारत के आक्रामक रवैये से क्षेत्र में संकट पैदा हो सकता है। लगातार 9वें हफ्ते प्रदर्शन कर रहे लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर हांगकांग में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भागे हैं। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन की खिड़कियों पर पत्थर, अंडे और दूसरी चीजें फेंकी थी। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी अजीत सारथी के हाथ। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।